महाराज युधिष्ठिर के पास बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष बैठे हुए हैं और भाई भाइयों की बातचीत हो रही है। युधिष्ठिर महाराज संन्यास लेना चाहते हैं, तो पहले अर्जुन ने मना किया, फिर भीमसेन ने मना किया कि कायरों का काम है। अर्जुन फिर बोलते हैं, अब अर्जुन जो बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान देवें। अर्जुन ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर जी, हमने प्राचीन काल में एक इतिहास सुना था। एक बार एक गांव के किशोर बालक जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, वे झुंड के रूप में अपने गांव से अपने घर से निकल गए और उन्होंने ये विचार किया कि घर से निकलकर जंगल में रहना ही हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए बिना किसी से राय लिए, बिना किसी ऋषि मुनि की बात सुने जंगल में चले गए। इंद्र ने देखा कि ऐसा करने से ये बालक कहीं भ्रम में फंस जाएंगे, तो इंद्र पक्षी बनकर आया, सोने की पाखें, सोने की चूंच और सोने की कलिंगी, ऐसा विचित्र पक्षी बनकर आए, तो वो सब बालक उस पक्षी की सुंदरता देखने लगे। वो सुंदर इसलिए बनकर के आए थे कि सबका ध्यान मेरे में लगे, मैं बोलूं उस बात को ये आदर से समझेंगे, इसलिए एक निराले और सुंदर पक्षी बनकर इंद्र आए। और इंद्र ने आकर के अपने चौंस से मनुष्यवाणी में उनको समझाना चालू किया। हे ब्राह्मण पुत्रो, यज्ञ करने के बाद जो बची हुई सामग्री है, उस सामग्री से अपना निर्वाह करने वाला काम बहुत कठिन होता है और जो इस काम को कर लेता है उसको बड़ी उत्तम गति मिलती है। तो उन ऋषि पुत्रों ने कहा, ब्राह्मण पुत्रों ने कहा, आपस में बोलने लगे, अरे ऐसा पक्षी तो आज तक कभी देखा ही नहीं, ये तो हमारी भाषा में बोलता है और ये शायद हमको ही कोई उपदेश दे रहा होगा। हम ही तो जंगल में आकर यज्ञ करके यज्ञ के बाद बची हुई सामग्री से निर्वाह करने की सोच रहे थे, ये तो हमारी प्रशंसा कर रहा है। आओ आओ मित्रों, इस पक्षी के पास चलते हैं और इस पक्षी से और भी कई बात सुनते हैं। वो इंद्र फिर अपने सुनहरी चौंस से कहने लगा, ए ब्राह्मण पुत्रों, नाहम युष्मान प्रशंसामि पंक दिग्धान रदस्वलान उच्चिष्ट भोजिनो मंदान, मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा? ना 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 ना, तुम तो कीचड़ में लिपटे हुए हो, तुम्हारे ऊपर धूल पोती हुई है, तुम तो ऊंटा खाते हो, तुम्हारी प्रशंसा थोड़े करता हूं। यज्ञ शिष्ट भोजन करने वाले तो कोई और ही होते हैं। तो उन ब्राह्मण बालकों ने कहा, इदम श्रेय परमिति, अरे हम तो यही समझ रहे थे कि घर बार छोड़कर जंगल में रहो, इसी से ही कल्याण होगा, लेकिन आपने तो हमारी आंखें खोल दी, बताओ हमको क्या करना चाहिए। हे पक्षीराज, आपकी वाणी का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, हमको आज तक किसी ने कोई उपदेश दिया नहीं, हमने भी किसी के पास जाकर उपदेश लिया नहीं, हम मनमाने ढंग से घर को छोड़कर आ गए, बताइए अब हमको क्या करना चाहिए। तो इंद्र बने हुए पक्षी ने कहा, पक्षी बने हुए इंद्र ने कहा, यदि माम नाभिशंकध्वम, यदि आप मेरी वाणी पर कोई अविश्वास नहीं करो, शंका नहीं करो, तो मैं आपको कुछ खुल करके कह सकता हूं, और मेरी बात को मजाक में उड़ा दो तो मैं अपना समय तुम्हारे लिए क्यों लगाऊं। उन बच्चों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे पक्षीराज, आप तो हमको अच्छे मार्ग की शिक्षा दे रहे हो, हम आप में श्रद्धा क्यों नहीं करेंगे, आप हमको सही दिशा बताइए। तब पक्षी बने हुए इंद्र ने कहा, देखो ब्राह्मण पुत्रों, जितने चौपाए जानवर हैं उनमें गौ सबसे श्रेष्ठ है, जितनी धातुएं हैं उनके अंदर सोना श्रेष्ठ है, और जितने शब्द हैं उनमें मंत्र श्रेष्ठ है, और दो पैर वाले अर्थात जितने मनुष्य हैं उनके अंदर ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण है वो मंत्र युक्त संस्कार बनाता है, और मरने के बाद भी उसके लिए वो संस्कार की विधि को जानता है, वैदिक कर्म करके ब्राह्मण स्वर्गादि की प्राप्ति करा देता है, और वो वेद की बात को सिद्ध करता है। एक महीने का यज्ञ होता है, 15 दिन का यज्ञ होता है, एक ऋतु में यज्ञ होता है, ऋतु माने 2 महीना, और सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, इनसे उपलक्षित जितने भी यज्ञ होते हैं उन सब यज्ञ को वो ब्राह्मण करवाता है, लेकिन वो यज्ञ वगैरह सब गृहस्थ आश्रम में ही संभव है, इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कर्म को तो छोड़ देता है और आगे क्या करना है इसका पता नहीं है, वे वास्तव में महामूर्ख होते हैं। मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे देवता प्रसन्न हो, पितर प्रसन्न हो, ब्राह्मण प्रसन्न हो। जो इन तीनों को प्रसन्न नहीं करते हैं वे वेद विरुद्ध मार्ग पर चलते हैं। आप लोग क्या करने जा रहे हो, आपने अपने माता पिता घर को छोड़ दिया, अब आप यहां किसकी सेवा करोगे, क्या काम करोगे, गृहस्थ का धर्म बड़ा पवित्र है और बड़ा दुर्लभ है, इस गृहस्थ का पालन करेगा, इस गृहस्थ धर्म का पालन करेगा वो सबसे बड़ा तपस्वी होता है, क्योंकि गृहस्थ के अंदर सबकी सेवा करना, वस्तु के द्वारा, भाव के द्वारा, क्रिया के द्वारा सेवा करना, ये सब तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या है। इसलिए हे ब्राह्मणों, आप लोग ये घर को छोड़कर आए हो, ये आपके लिए सर्वथा अनुचित बात है। यज्ञ शेष का भोजन गृहस्थ में ही हो सकता है, अतिथियों का सत्कार गृहस्थ में ही हो सकता है, देवताओं की पूजा, माता पिता की सेवा, स्वजनों की सेवा गृहस्थ में ही हो सकती है, और जगह थोड़ा ही हो सकता है। इसीलिए जो धर्म पर आरूढ़ व्यक्ति हैं वे सब गृहस्थ आश्रम को नमस्कार करते हैं। ईर्ष्या रहित दुष्कर कर्म करने वाले बड़े बड़े पुण्यात्मा लोग गृहस्थ का पालन करके अनंत आनंद में डूबे रहते हैं। तब वे ब्राह्मण कुमार पक्षी रूपधारी इंद्र की बात सुनकर के वे वापिस अपने घर में आ गए और एक बहुत उत्तम गृहस्थी बने, बड़े विद्वान बने, त्रिकाल संध्या करने वाले बने, यज्ञ हवन करने वाले बने और बड़े श्रेष्ठ हुए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज धैर्य का अवलंबन करो और ये सारी पृथ्वी आपको राज्य करने के लिए मिली है, न अब आपका कोई शत्रु है और न ही कोई आपका विरोधी है। यहाँ कोई द्रव्य की कमी नहीं है, उत्तम से उत्तम यज्ञ करके प्रजा की रक्षा करो। इतने में ही नकुल खड़ा होकर कहने लगा। पहले उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को वंदना की और उसके बाद नकुल जो बहुत ही सुंदर शरीर वाला था, जो मितभाषिता सदा कम ही बोलने वाला था, ताम्रास्य है उसका मुख तांबे के समान लाल वर्ण का था, उसके कंधे बड़े हृष्टपुष्ट थे, छाती चौड़ी थी, बड़ी नम्रता से सभा में प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे महाराज, विशाख यूप नाम के एक देश के अंदर बड़ी बड़ी यज्ञ वेदियां बनी हुई हैं, जहां पर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया और फिर वहां देवताओं ने भी यज्ञ किया था। नास्तिक लोग तो इन चीजों को मानते नहीं है, लेकिन पितर होते हैं वो तो अपने सब प्राणियों का पालन करने वाले होते हैं। वे पितर भी शक्ति कब देते हैं? जब उनको यज्ञ से शक्ति मिलती है। यदि आप गृहस्थ छोड़ देंगे तो पितरों को कैसे आप यज्ञ करके तृप्त कर पाएंगे? वेद विरुद्ध चलने वाले लोग होते हैं वो नास्तिक होते हैं। वेदों की आज्ञा का उल्लंघन करने पर ब्राह्मण भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए गृहस्थ को वेद का आचरण करना सबसे ऊंचा बताया गया है। सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ऊंचा आश्रम है। आपके पास जो धन है, गृहस्थ में जो धन होता है, वो धन भोग के लिए नहीं होता, वो धन यज्ञ के लिए होता है। यज्ञ का अर्थ होता है कि सबकी सेवा करना। आपको मालूम ही होगा कि वन में कौन रहते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, जिनमें जिनके परिवार में कोई नहीं रहता है, और जिसके यहां कभी रसोई नहीं बनती, जिसके यहां कोई अतिथि नहीं आता, वो गृहस्थ धर्म का पालन करने में असमर्थ होता है। असमर्थ अवस्था में वो गृहस्थ को छोड़कर वानप्रस्थी बनता है। जो व्यक्ति क्रोध को और हर्ष को और दूसरे की चुगली को छोड़ देता है, वेदाध्ययन करने वाला वही व्यक्ति त्यागी कहलाता है। केवल अपने आश्रम का त्याग होता है, वो त्याग नहीं माना जाता है। एक बार सब ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम को एक पलड़े में रखा और एकता और एक पलड़े में गृहस्थाश्रम रखा। सब ऋषि मुनियों ने मान लिया कि गृहस्थाश्रम सबसे ऊंचा होता है। समीक्ष तुलिया पार्थम पार्थ कामम स्वर्गं च भारत अयम पंथा महर्षीणाम अयम लोकविदांगति। इसलिए त्यागी वो होता है जो गृहस्थ में रहता है और वस्तु का अच्छे काम में त्याग करता है। यदि ऊपर का आप त्याग कर दोगे और वन में जाने के बाद आपको भोगे हुए संस्कार आपके मन में भोगों में रुचि बढ़ा देंगे तो आप अपने स्वयं के ही हाथ से स्वयं के गले में मृत्यु का पास बांध रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप त्याग करके वन में चले गए तो और कुछ नहीं होगा तो ये तो आपके मन में आएगा कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूं जो मैंने राज्य का त्याग किया है, इतने बड़े राज्य का, शत्रु रहित राज्य का, धनधान्य संपन्न राज्य का, इनका मैंने त्याग किया है। तो ये मैंने त्याग किया है, ये अभिमान आपको कभी सुखी नहीं रहने देगा। महाराज, आपने अपने गृहस्थ से इतनी बड़ी पदवी प्राप्त की है, आज उस गृहस्थ को आप छोड़ रहे हैं। यदि ऐसे आपके पिताजी गृहस्थ छोड़ देते तो आज आप ये इतने बड़े पद पर थोड़े विराजमान हो सकते थे। गृहस्थाश्रम देवता पितरों और अतिथियों के लिए सबका आश्रय स्थल है। ब्रह्मा जी ने यही विचार किया था कि मैं जब ये सृष्टि बनाऊंगा तो लोग यज्ञ करेंगे और यज्ञ करके भगवान का यजन करके शांति का विस्तार करेंगे। यज्ञ की सामग्री के लिए ब्रह्मा जी ने गाय बनाई, वृक्ष बनाए, लताएं बनाई, औषधियां बनाई, वेद बनाए, मंत्र बनाए, सब यज्ञ की सामग्रियां हैं। ये मनुष्यों के भोग के लिए नहीं बनाई, यज्ञ के लिए बनाई थी। गृहस्थाश्रमिणस्तच्च यज्ञ कर्म निरोधकम तस्मात् गार्यस्थमेवे है दुष्करम दुर्लभम तथा। इसलिए गृहस्थ का धर्म सबसे बड़ा तपस्या है और आश्रमों में इतनी बड़ी तपस्या नहीं है। संसार में दुष्कर और दुर्लभ गृहस्थ धर्म होता है। जिन गृहस्थियों के पास खूब अच्छे पशु भी है, धन धान्य भी है, लक्ष्मी भी है, लेकिन यज्ञ वगैरह नहीं करते हैं, वे पाप के अंदर पड़े रहते हैं। आपने इधर उधर से विजय प्राप्त करके कितनी बड़ी राजलक्ष्मी इकट्ठी की है और बिना यज्ञ के ही आप छोड़ करके जाना चाहते हैं, ये अन्याय है। जिसके ऊपर कुटुंब का भार होता है वह कभी भी गृहस्थ का त्याग न करे, ऐसे वेद की शास्त्र की आज्ञा है। बल्कि उसको तो राजसु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए। आपको चाहिए कि यदि आप राज छोड़ के चले जाएंगे तो प्रमाद दोष के कारण से डाकू वगैरह आपके राज्य में उत्पात मचाएंगे, प्रजा को कोई शरण देने वाला नहीं होगा। ये इतने घोड़े हैं, गाय हैं, दास दासियां हैं, आपके हाथी हैं, गांव हैं, नगर हैं, बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, ये सब क्या करेंगे? ये सब प्रजा दूषित हो जाएगी, प्रजा का कोई मालिक नहीं रहेगा। तो लोग दोषाणाम एव भोक्ता रहे न सुखानाम कदाचन है। जो आदमी इनको छोड़कर चला जाता है वन में, वो केवल दोष का भागी बनता है, उसको सुख कभी नहीं मिलता। त्याग की परिभाषा समझिए। बाहर और भीतर जो मन को फंसाने वाली बातें हैं उन सब का भीतर से त्याग करता है वो त्यागी होता है। न हित्वा प्रतिष्ठति, बाहर को बाहर से घर छोड़ने पर उसकी कोई सिद्धि नहीं होती। तो गृहस्थ आश्रम में रहो और आप महाराज ठीक ढंग से चलो। ब्राह्मण होता है वो गृहस्थ आश्रम का पालन करने पर उसका पतन नहीं होता। आप तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने पर तो आपको विशेष जिम्मेदारी से गृहस्थ का पालन करना चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए। जैसे देवता देवराज इंद्र है वो सेना की रक्षा करते हैं, देव सेना की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने गृहस्थ में रहने वाले परिवार के लोग और प्रजाजन इन सब की रक्षा करो। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप इंद्र के साथ में आनंदित रहेंगे। सहदेव ने कहा, न बाह्यम द्रव्यम उत्सृज्य सिद्धिर्भवति भारत। हे भरत पुत्र युधिष्ठिर महाराज, ये आपके मन में क्या बात आ गई, छोड़ करके जंगल में चले जाएंगे? आपने कभी किसी हर मुर्दे का कल्याण देखा है? वो सब कुछ छोड़कर चला जाता है, कभी वापिस नहीं आता है, बल्कि उसके सारे संकल्प भी छूट जाते हैं, लेकिन उसका कल्याण होता है, उसको सिद्धि मिलती है नहीं मिलती? तो बाहर के त्याग को आपने क्या इतना बड़ा मान लिया? यदि आप बाहर का त्याग करके वन में जाएंगे तो उससे मिलने वाला जो दुख है वो दुख हमारे शत्रुओं को मिले महाराज, वो आप भोगने लायक नहीं है। और द्रव्य आदि की ममता छोड़ करके ठीक न्याय और धर्म से पृथ्वी का पालन करोगे, उससे जो आनंद मिलेगा वो आनंद हमारे मित्रों को मिले। आपने सुना ही है कि दो अक्षरों में जहर रहता है और तीन अक्षरों में अमृत का निवास है। मम, ये म ये मेरा है, इसके अंदर जहर का निवास है, इसके अंदर मृत्यु का निवास है। और न ममेति, और ये मेरा नहीं है, न मम, इसके अंदर अमृत का निवास है। ये अमृत और मृत्यु दोनों ही आपके अंदर अदृश्य रूप से बैठे हुए हैं। अब आप अमृत को चाहते हैं या मृत्यु को चाहते हैं, या आप खुद देखिए। इस शरीर, अच्छा जीव है ये शाश्वत रहता है, अविनाशी रहता है। तो आप कहते हो कि परिवार के लोग मर गए इसलिए मैं वन में जाना चाहता हूं, तो मरता तो शरीर है, वो प्राणी तो मरता नहीं है, जीव तो मरता नहीं है, इसलिए आपको कोई शोक नहीं करना चाहिए। और यदि आप ये समझते हो कि जीव भी साथ में मर जाता है, तो जीव यदि मर जाता है ऐसी बात मानते हो तो ये फिर वैदिक उपदेश वगैरह ये करो और ये मत करो ये व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि मरने के बाद तो कोई काम ही नहीं, न जीव रहेगा न शरीर रहेगा। ये तो आप मानते नहीं हो कि जीव अनित्य है, शरीर के साथ ही मर जाता है, ये तो आप मानते नहीं हो, इसलिए आप कर्तव्य का पालन करो। आप इतनी बड़ी पृथ्वी का सम्राट हो करके, और यदि आप ठीक ढंग से लक्ष्मी का उपयोग नहीं करें तो आपके आपका जीवन निष्फल हो जाएगा। यदि आप वन में चले गए और वहां भी आपको मरे हुए भाइयों का शोक हो गया, तो फिर आपने गृहस्थ को भी कलंकित कर दिया और वानप्रस्थ आश्रम को भी कलंकित कर दिया। बाह्यांतरम च भूतानाम स्वभावम पश्य भारत, प्राणियों का बाह्य स्वभाव कुछ और होता है, अंदर का स्वभाव कुछ और होता है। अंदर में परमात्मा है, उन परमात्मा को आप भजिए और बाहर से आप भयमुक्त होकर के रहिए। मेरे तो आप ही पिता हो, आप ही माता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे गुरु हो। आपके वनवास की बात सुनकर मैं बड़ा दुखी हो गया, इसलिए मेरे ये उद्गार निकले। आज तक जीवन में कभी मैं आपके सामने बोला नहीं हूं। मेरे वचन से यदि आपको कोई कष्ट हुआ हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे। मैंने तथ्य की या अतथ्य की कोई भी बात कही है उसको आप अच्छी तरह से समझ लेना। अच्छी बात लगे तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ देना। मेरा कोई आग्रह नहीं है, मेरे मन की बात कही है। चारों भाइयों ने बोल दिया, अर्जुन ने, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने। अब द्रौपदी बोलती है, एवं व्याहृति कौन्तेय। चारों भाइयों ने जब ये बात बोली तब उस सभा के अंदर विराजमान द्रौपदी, जिसकी मोटी मोटी आंखें थी, जिसके चेहरे पर पातिव्रत्य का तेज चमचमा रहा था, जिसकी रहस्य भरी वाणी निकलती है, वो पुरुष श्रेष्ठ युधिष्ठिर जी के पास हाथ जोड़ते हुए नम्रता से कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप अपने मन की बात कर रहे हो, ये आपके भाई आपका संकल्प सुनकर के सूख से गए हैं, पपिए की तरह रट लगा रहे हैं और आप इनकी बात सुनते ही नहीं। हर समय जिन्होंने आपका साथ दिया है, हर परिस्थिति में जिन्होंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, आज आप इन भाइयों को आनंदित करने में पीछे हो रहे हैं, आपके दुख से दुखी होकर बोल रहे हैं। अन्यथा आप चाहे वन में रहो, चाहे आप यहां रहो, इन्हें क्या मतलब, पर ये आपसे जुड़े हुए हैं इसलिए इनका मन दुखी हो गया। पूर्व वचनों को याद करो, बड़े पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो अपने वचनों से कभी इधर उधर नहीं होते हैं। द्वैत वन में अपने लोग रहते थे, कितनी सर्दी गर्मी बरसात को अपन ने सहन किया था, उस समय आपने क्या बात कही थी हम सबको सुनाते हुए। आपने कहा था, वयम दुर्योधनम हत्वा मृदे भोक्षाम्य मेदिनीम, भाइयों इस दुर्योधन को मारने के बाद संपूर्ण पृथ्वी जब हमारे पास आ जाएगी तब हम हमारे रथ इस पृथ्वी के ऊपर घूमेंगे, प्रजा के कष्ट को दूर करेंगे, ब्राह्मणों की सहायता से हम बड़े बड़े यज्ञ करके ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट करेंगे, उस समय हमारा वनवास का दुख याद आएगा, तो हम यज्ञ आदि के द्वारा उसको सुख में बदलने की चेष्टा करेंगे। इति एताने उक्त्वा, ऐसा आपने कहा था कि नहीं, और आज आप भी क्या नई बात छेड़ रहे हैं। कथम अद्य पुनर्वीर विनिहंसी मनांसी, ने हमारे मन को तोड़ रहे हैं आप, हम राज्य को छोड़कर के वन में जाएंगे। महाराज, राज लक्ष्मी का पालन हर आदमी से नहीं होता है, पुरुषत्व से हीन व्यक्ति पृथ्वी का पालन नहीं कर सकता, धन का उपयोग नहीं कर सकता, घर में पुत्र आदि का पालन नहीं कर सकता। मत्स्या पंख इवासते, जैसे मछलियां हैं वो कीचड़ में नहीं रह सकती, पानी में रह सकती, कीचड़ में कैसे रहेंगी, कीचड़ तो बहुत ज्यादा होता है, पानी बहुत गदला, उसमें मछली नहीं रह सकती, उसमें मच्छर रह सकते हैं, मछली नहीं रह सकती। आपको ये शासन करना नहीं आता क्या? नादंड क्षत्रियो भाति, क्षत्रिय की शोभा दंड देने में होती है। जो आदमी शक्ति नहीं रखता वो दंड क्या देगा, और जिसमें दंड देने की क्षमता नहीं वो पृथ्वी का उपयोग नहीं कर सकता और उसके राज्य में प्रजा सुखी नहीं रह सकती। सब प्राणियों के साथ मित्रता करो, सब पर दया करो, अपकार करने वाले के साथ भी उपकार करो, अध्ययन करो, दान करो, तपस्या करो, ये सब ब्राह्मण के धर्म होते हैं महाराज, क्षत्रिय के थोड़े कठोर धर्म भी होते हैं। राजाओं का धर्म यह है दुष्टों को दंड देना, राजा दंड भी देता है और क्षमा भी करता है, दान भी देता है और अभय भी देता है और डराता भी है, शत्रुओं को डराता है और शरणागतों को पवित्र आत्माओं को अभय भी करता है और दान भी देता है और टैक्स भी लेता है, दोनों काम करता है राजा, निग्रह भी करता है अनुग्रह भी करता है, दुष्टों को दंड देता है और अनुग्रह करता है माने दीनों पर कृपा भी करता है। आपको ये पृथ्वी मालूम है कैसे मिली है? कोई विद्या अध्ययन से नहीं मिली, दान से नहीं मिली, किसी की कृपा से नहीं मिली, किसी के आगे भीख मांगने से पृथ्वी नहीं मिली है। इस पृथ्वी को प्राप्त करने के लिए आपके चार भाइयों का बल पौरुष काम आया है और इनके साथ में भगवान आप पर आशीर्वाद रखें, इसलिए आपको ये राज्य मिला है। आप इन सब के विपरीत जा नहीं सकते हैं, आपको जाने का कोई अधिकार नहीं। ये जम्बूद्वीप है महाराज, बड़े बड़े राजा लोग हो गए, जम्बूद्वीप आपके पास, क्रौंच द्वीप आपके पास, शाकत द्वीप आपके पास, भद्राश्व वर्ष आपके पास, इतना बड़ा आपने ये राज्य प्राप्त किया है और आप इसमें दंड विहीन होकर जंगल में जाने की बात सोचते हैं। राज्य छोड़कर के वन में अवश्य जाइएगा, पर आज नहीं, आज जाना कायरता होगी। आपके लड़के हों, आपके पोते हों, वो आपके बड़े बने, सामर्थ्यवान बने, संभालने लायक काम संभालने लायक बन जाए, बड़े प्रेम से वो आपको विदा करेंगे, तब आप वन में जाना, संन्यास लेना, वानप्रस्थी होना। आज आपका जाना ये अच्छा नहीं लगता है। देवताओं के समान सूरवीर ये आपके भाई, एकोपी सुखा ये सा, मेरी चिंता नहीं है, मेरे तो आप पांच पति हो, यदि आप चले भी गए संन्यास लेकर तो ये चारों मेरे पालन में, मेरे सुख सुविधा में ध्यान रखने वाले हैं, पर हम चारों का कर्तव्य और मेरा भी कर्तव्य ये नहीं होगा कि आपको वन में भेज दें और हम यहां बैठे बैठे राज्य के महलों में सुख भोगे। अनृतम नाब्रवीत श्वश्रु, और मेरी सासू जी ने, आपकी माता जी ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, उन्होंने आपको कहा था युधिष्ठिरस्त्वाम पांचाली सुखे धास्यत्यनुत्तमे, उन्होंने मुझसे कहा था कि ए पांचाली द्रौपदी, युधिष्ठिर तुम्हारे सुख सुविधा की पूरी निगाह रखने वाले हैं, और ये युधिष्ठिर जब हजारों हजारों राजाओं का वध करके इस इतनी विशाल पृथ्वी के शासक बन जाएंगे, वो दिन देख करके मैं बहुत प्रसन्न होना चाहती हूं। आज आप अपनी मां के वचन व्यर्थ करने जा रहे हो? जिनका बड़ा भाई उन्मत्त हो गया हो, वे अपने बड़े भाई का त्याग भी कर दें तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपके भाई ऐसे हैं नहीं। यदि शिवरुन्मत्ता भ्रातरस्ते नराधिप बद्ध्वा त्वाम नास्तिक साधम प्रेषयेयुर वसुंधराम, यदि आप पागल हो गए होते तो आपको बांध करके, नास्तिक लोगों के साथ बांध करके आपको दूर फेंक आते कि जाओ युधिष्ठिर तुम पागल हो गए, पगलों के साथ रहो, पर तुम्हारे भाई ऐसा करते नहीं है। कोई आदमी पागल हो जाता है तो उसको कोई घर से निकालता नहीं है, उसको धूप बत्ती से उसके नाक के अंदर धुआं पहुंचा रह जाता है, और उसको दवा दी जाती है, और यदि उन्मादी व्यक्ति घर में किसी के थप्पड़ वगैरह मार दे तो भी वो सहन किया जाता है कि भाई ये तो उन्मादी है। ऐसे ही मुझे लगता है कि आप उन्मादी हो गए, पागल हो गए, इसीलिए आपके भाई आपके उपचार के लिए बोलते हैं। महाराज, कुछ विपत्ति तो प्रारब्ध से आती है, परंतु आज आप अज्ञान से विपत्ति को बुला रहे हैं। त्वम तु सर्वा महिम त्यक्त्वा कुरुषे स्वयं आपदम, इतनी बड़ी पृथ्वी का त्याग करके आपत्ति को बुला रहे हैं, आपको विचार नहीं आता क्या? इस पृथ्वी के उस शासक आप ही रहे, मानदाता भी रहे, अम्बरीश भी रहे, समय पर उन्होंने त्याग भी किया है, आपको एक नया आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए महाराज, यजस्व विविधेर यज्ञ, यज्ञ कीजिए, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए, और युद्धस्व अरीन, शत्रुओं से युद्ध कीजिए, धनानि प्रयच्छ, और धन आदि का दान कीजिए, और भोग है, वस्त्र पदार्थ है, ये ब्राह्मणों को देकर इन सबको पवित्र कीजिए। अर्जुन ने ये वचन सुने पांचाली के, अर्जुन के मन में बड़ा जोश आया। अर्जुन ने कहा, महाराज एक स्त्री जिसको हम बोलते हैं कि ये नारी है, ये स्त्री है, ये क्या समझती है? सुना आपने द्रौपदी के अकाट्य वचन है, आप आज दंड देने में डर रहे हैं। दंड के द्वारा तो संपूर्ण संसार चल रहा है महाराज। भगवान यदि काल दंड का सेवन न किए होते तो न समय पर सूर्य उदित होता, न चंद्रमा उदित होते, न दिन उदित होता, न रात होती। ये तो भगवान है जो काल दंड से सबका पालन करते हैं। राजा भी दंड के द्वारा धर्म का पालन करता है, दंडधान्य की रक्षा करता है। राजदंड भया दे के पापा पापम न कुर्वते, अरे हम पाप करेंगे तो राजा हमको कैद खाने में डाल देगा, ऐसा समझकर पापी पाप से बचता है। और यदि हम पाप का आचरण करेंगे तो यमराज जी हमको नरक में डाल देंगे, ऐसा समझकर मनुष्य यमराज से डरता है। और समाज में यदि कोई पाप करेंगे तो समाज के लोग हमको क्या कहेंगे, तो इस दंड के अपराध से कितना लोगों का कल्याण होता है, कितनी सिद्धियां होती हैं। दंड एक बहुत अच्छी चीज होती है, दंड के द्वारा दुष्टों का निग्रह होता है। ब्राह्मण को दंड देना हो तो वाणी से अपमानित किया जाए, इतने में दंड हो जाता है। क्षत्रियों का दंड होता है भुजारपणम, भुजारपणम माने उनको केवल भोजन दिया जाए, बस क्षत्रिय का यही दंड है। और दान दंडा स्मृता वैश्य, और वैश्य को यदि दंड देना हो तो पैसे का टैक्स लगा दो, वो दंड हो गया। और निर्दंड शूद्र उच्यते, शूद्र को कोई दंड नहीं दिया जाता है, बस उसको तो दंड यही है सेवा करे, सेवा से काम लेते रहना चाहिए उसे, और कोई दंड नहीं है उसका। मनुष्यों को सन्मार्ग में लगाने के लिए, मर्यादा स्थापित करने के लिए दंड है। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, भिक्षुक, ये सब दंड के भय से अपने अपने मार्ग में खूब आनंद के साथ चलते हैं। जो आदमी दूसरों का वध नहीं करता, पापियों को अबध नहीं करता, आत्ताइयों का नाश नहीं करता, उसकी संसार में अपकीर्ति होती है। आप देखते नहीं, देवता लोग अपने ही भाइयों को दंड देते हैं, दैत्यों को दंड देते हैं, और उनको दंड देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते हैं। स्कंद है, रुद्र है, इंद्र है, अग्नि है, यम है, मरुदगण है, एतान देवान नमस्यन्ति, सब लोग इनको नमस्कार करते हैं क्योंकि इनके पास दंड शक्ति है। इस संसार में एक प्राणी दूसरे प्राणी से डरता रहता है। नकलो मूषिकान 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 अत्ति, नेवड़ा है वो चूहे को खा जाता है, और बिडालो नकुलम तथा, और नेवले को बिलाव खा जाता है, और बिडालम अति स्वराजन, और बिलाव को कुत्ता खा जाता है, स्वानम व्याल मृगस तथा, और कुत्ते को चीता वगैरह दूसरे पशु पक्षी दूसरे पक्षी दूसरे पशु खा जाते हैं। एक एक का एक एक भक्षक है, इसलिए सब एक दूसरे से डरते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि बनाई थी, विदे विधानम देव वेतम तत्र विद्वान न मुह्यति, उस समय विधाता ने जैसा बनाया है उसका वैसा ही जीवन में होने वाला होता है, क्योंकि कर्म के अनुसार होता है। आपका अभी वन में जाने का किसी प्रकार से औचित्य नहीं है। देखो महाराज, जीव में आप सोचते हो कि जीव मरते हैं, पानी पीते हो तो कितने जीव मरते हैं, उदके बह वह प्राणा, श्वास लेते हो तो कितने जीव मरते हैं। जहां जीव को मारने की नियत नहीं है और मरते हैं वहां पाप नहीं लगता है, पाप तो वहां लगता है जहां जीवों को मारने की भावना होती है। ऋषि मुनि क्रोध और ईर्ष्या से रहित होकर गांव छोड़ करके वन में चले गए, पर वे ऋषि मुनि गए थे, क्षत्रिय नहीं गए थे। और उन ऋषि मुनियों में भी किसी में मोह जागृत हो गया तो वापिस गृहस्थ में आ गए। क्या ये उचित होता है? अतः महाराज, संसार में दंड तो आप कहते हो दंड देना पड़ेगा इसलिए हम वन में जाते हैं, तो दंड तो आपका गुण है। भले बुरे का विचार करने के लिए दंड नहीं होगा तो दुनिया में अंधकार ही अंधकार फैल जाएगा। दंड के भय से महाराज बालक भी संयत रहते हैं, युवतियां भी धर्म के दंड से अपने धर्म का पालन करती हैं, प्रजा दंड के भय से अपने कर्तव्य का पालन करती हैं। यदि दंड नाम की चीज नहीं रहे तो कुत्ता यज्ञ की सामग्री को चाट सकता है, हरित काक है पुरोडाशम, कौवा आकर हवन सामग्री को ले जाएगा। इसलिए आपको दंड दान करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। देखो ना, लोग पशुओं को काम में जोतते हैं, बैल को जोतते हैं, ऊंट को जोतते हैं, गधों को जोतते हैं, ये सब उनको जोतते हैं उनको, और ऊपर से दंड का भय रहता है तो सब मार्ग पर सही सही चलते हैं। दंड तो साहब आगे से आदि से लेकर अंत तक सब जगह फैला हुआ है, इसलिए आपको दंड से भयभीत होकर इधर जाने में किसी प्रकार से संकोच नहीं करना चाहिए। देखो, द्रौपदी के कहने के बाद बड़ा उत्साह आया अर्जुन को और बड़ा उत्साह आया भीमसेन को भी। अब भीमसेन जी भी बात कहेंगे और उसके बाद भीमसेन जी भी मोटी मोटी बात कही देते हैं। भीमसेन जी ने कहा कि देखो, मैंने कई बार सोचा है कि आपके सामने कभी कुछ नहीं कहूं कभी कुछ नहीं कहूं, पर अब ज्यादा ही बात हो गई इसलिए मुझे आपके सामने बोलना पड़ता है। आपके मन में बड़ी व्याकुलता हो गई, बड़ी निर्बलता आ गई, इतने शास्त्रों को आप जानने वाले हो, फिर ये क्या हो गया आपको? ऐसा दो प्रकार की व्याधि होती है, एक शारीरिक व्याधि एक मानसिक व्याधि। शारीरिक व्याधि हो वो तो गलत खाने पीने से हो जाती है, लेकिन मानसिक व्याधि होती है वो अविवेक से होती है, मूर्खता से होती है। हमें ऐसा लगा है कि आपको अविवेक से व्याधि पैदा हुई, मानसिक व्याधि अविवेक से हुई है। हमने आपका सदा साथ दिया। सभा के अंदर द्रौपदी की जिस समय बेइज्जती की जा रही थी वो आपने देखा, क्या वो घटना आपको याद नहीं आती है? आप इस नगर से निकाले गए थे और दुर्योधन वगैरह सब आपकी तरफ यूं इशारा करके आपकी खिल्लियां उड़ा रहे थे, वो दिन याद आपको नहीं आते हैं क्या? जंगल में आपने कितना कितना कष्ट सहन किया है, न तस्य स्मर्तुम अर्हसि, क्या वो दिन भूल गए आप? जटासुर से कितना क्लेश हुआ, चित्रसेन से युद्ध हुआ, और भी अपने लोगों को कितना कितना वनवास के अंदर युद्ध करना पड़ा, सब आप भूल गए? और कीचक ने द्रौपदी के साथ कैसा व्यवहार किया था, दूसरे राजाओं के यहां जाकर नौकरी करके रोटी खा करके अपने अज्ञातवास का समय निकाला था, वो सब एक क्षण में आप भूल गए? देखो अभी आपको एक युद्ध, वो युद्ध तो जीत गए लेकिन आप मानसिक युद्ध के अंदर हार रहे हो, इसलिए आप इस मानसिक युद्ध के अंदर जीतिए, और यदि इसमें हार गए तो आपके हार के साथ कितने बड़े पृथ्वी के राजाओं की हार हो जाएगी। बड़ा अच्छा हुआ दुर्योधन मारा गया, बड़ा अच्छा हुआ द्रौपदी के केश पास को छूने वाला दुशासन मारा गया। ये यदि आज जीवित रहते तो आप संन्यास की बात करते तो आपकी कितनी अपकीर्ति होती, यही शत्रु आपको चिढ़ाते कि हमारे डर से ये संन्यास दे रहा है। अच्छा हुआ वो मर गए, आपके संन्यास पर हम रोने वाले तो हैं लेकिन कोई खिल्ली उड़ाने वाला तो नहीं रहा, लेकिन आपकी लोग खिल्ली उड़ा सकते थे। सोच समझ करके विचार करो। ये सब बातें सुनने के बाद अब युधिष्ठिर महाराज आगे कल बोलेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण 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 नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
सियावर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुट वंशी वारे
की जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय।